نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اتلو، تلاوت کیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ تلاوت کیجئے. کیا؟ ما اوحی الیک، جو بھی وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہاں سے؟ من الکتاب، کتاب سے، یعنی قرآن سے. گو کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے نہیں تھا جیسے ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، اگر ایک لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں. آپ کتاب میں سے پڑھ کے سنائیے، تلاوت کیجئے. کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسوس کرتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے اس بات پر کہ اہل مکہ کیوں ایمان نہیں لے آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو دل کی تسلی کے لیے ہیں. آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے. اس میں آپ نے پڑھا ہے نا ابھی نوح علیہ السلام کا، ہود، صالح، ابراہیم علیہ السلام کے قصے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ بالکل رنجیدہ نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں آپ سے پہلے پیغمبر کتنے عرصے تک لوگوں کے پاس پیغام پہنچاتے رہے، دلائل بیان کرتے رہے، اور ان کے لوگوں میں سے بہت ہی کم تھے جو ایمان لے کر آئے. تو آپ تلاوت کریں، آپ کا غم دور ہوگا، آپ کے دل کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ جب ہم بھی کبھی رنجیدہ ہوں، جب بھی ہم دکھ میں ہوں، ایک ڈپریشن سا چھا جائے، کچھ کر نہیں پا رہے، بعض اوقات بچے بات نہیں سنتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں سن رہے. نبی تو اپنی قوموں کے لیے اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے. آج کے وقت میں اگر آپ مطلب اگر عام لوگ ہیں جو کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے، اپنے گھر میں کسی کو کچھ بتا رہے ہیں یا ایسا کوئی نہیں بھی معاملہ ہے، ویسے ہی ڈپریس ہیں، ویسے ہی کسی بات میں اتنی ان کے دل یعنی رنجیدہ ہے، غمگین ہے. تو نسخہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے جو پچھلا پارا ختم ہوا ہے وہ کس بات پہ ختم ہوا ہے؟ عنکبوت پہ ختم ہوا ہے، غیر اللہ کا سہارا لینے پہ ختم ہوا ہے، کہ جو غیر اللہ کا سہارا لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت العنکبوت کو تھاما، اس کا سہارا لیتا ہے. اور بیت العنکبوت کا حال تو یہ ہے، استغفر اللہ ربی، کہ جو عنکبوت ہوتی ہے، جو مکڑی ہوتی ہے، فیمیل زیادہ تر جالے بناتی ہیں، میل بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ جالہ بنائے، فیمیل بناتی ہے. اور یہ ایک ایسی فیمیل ہے عنکبوت جو میل سے بڑی ہوتی ہے، اپنے میل سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ویسے دوسرے حشرات میں دیکھیں تو میل زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، مگر یہ عنکبوت میں یہ فیمیل زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور جو ہی ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ مونس جو ہوتی ہے یہ اپنے جو مذکر ہوتا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. اگر وہ بھاگ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ بھاگ سکے تو وہ اس کو کھا لیتی ہے. اتنا بے رحم ہے یہ مکڑی کا جالا، اور یہ مکڑی اور اس کا گھر کتنی بے رحم جگہ ہے جس میں کوئی محبت نہیں ہے. یہ گھر وہ گھر نہیں ہے جیسے محبت سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، جن میں رشتوں کا پاس ہوتا ہے، جس میں کوئی کسی کا لحاظ ہوتا ہے. یہ وہ گھر نہیں ہے، یہ گھر ایسا ہے جس میں ٹریپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ٹریپ ہوا ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے. یہ نقصان دینے والا گھر ہے، یہ کوئی امن اور حفاظت کرنے والا گھر نہیں ہے. یہی حال جو اللہ کے علاوہ سہارے بناتے ہیں ان کے بھی سہارے ایسے مکڑی کے جالوں کی طرح جو اٹریکٹیو تو نظر آتے ہیں، جب بھی مکھی آ کے اندر پھنس جاتی ہے نا، اٹریکٹیو سے نظر آتے ہیں، مگر جب وہاں تک پہنچتی ہے تو ایسی پھنستی ہے کہ جان سے بھی جاتی ہے. तो इनमें नुकसान ही है, जो आके फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वो जान गंवा देता है। अब बड़ा हसीन लगता है लेकिन वहां पे खैर नहीं मिलती, वहां पे पनाह नहीं मिलती, वहां पे कोई हिफाजत का सामान नहीं है, बल्कि वहां पे नुकसान ही नुकसान है जो उसमें फंस जाए। तो गैरुल्लाह का सहारा कभी वो नहीं बन सकता कि इंसान की पनाह का जरिया बन जाए, या इंसान के लिए कोई उसको थाम ले, या उसको कोई उसके सलूशन दे दे किसी चीज का। गैरुल्लाह के सहारे ऐसे हैं, ये जितने इश्तेहार देते हैं ना, ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आ जाओ हम आपके मसले हल कर देंगे, बच्चे नाफरमान हैं, शौहर के साथ नहीं बनती, घर बिगड़ रहा है, सास के साथ झगड़ा है, बहू ऐसे करती है, आ जाए हमारे पास, हम सारे आपके मसलों को हल कर लेंगे। ये गैरुल्लाह के सहारे हैं। इस जाले में जो फंस गया वो अपना नुकसान कर लेगा। और ये फिर सहारे ऐसा सहारा है कि जो चिपक जाता है, साथ छोड़ता नहीं है जान, ये जाने नहीं देता। फिर जो उसमें फंस गया वो गया, और इनसे दूर रहना चाहिए। तो हमने ये सारा पढ़ा था, गैरुल्लाह के सहारा कितना डेंजरस है कि इंसान उसकी तरफ को हाथ बढ़ाए। इंसान उसके अंदर फंस गया तो फिर उसके लिए मुसीबत है। ये बड़ा बड़ी बेरहम चीज है। तो आप ये देखें, और जो मकड़ी होती है वो भी, उसने ये जाला किस लिए बनाया होता है? वो थोड़ी इसलिए बनाया होता कि मुझे ये से बारिश से और धूप से बचाएगा। वो तो इसलिए बनाया होता है कि लोगों, ये जो दूसरे मक्खियां और ये, इनको मैं फंसा लूं। इन्होंने भी ये जाल इसलिए बिछाए होते हैं कि लोगों को फंसा लें। कोई आपके मसले हल करने के लिए नहीं बिछाए होते। उनको इतना शौक नहीं है कि दुनिया के मसले हल करें। बेचारे इतने कई लोगों की दर्द के अंदर मरे चले जा रहे हैं कि उसके इश्तेहार देते हैं और आपको बुलाते हैं कि आ जाओ। ये जाला है मकड़ी का, बैतुल अनकबूत है। तो गैरुल्लाह का सहारा ना लो, अल्लाह का सहारा लो। अब इंसान सोचता है कैसे नहीं अल्लाह का सहारा, अल्लाह तेरा सहारा कैसे मिलेगा? उसका तरीका बताया जा रहा है यहां पे, कैसे अल्लाह का सहारा लेना है तुमने। सबसे पहले उसमें क्या है? कुरान की तिलावत। अब तिलावत हम समझते हैं, जिसको तिलावत, वो ये है कि हम पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं और इतने कुरान खत्म करते जाएं। ये तिलावत नहीं होती। तिलावत होती है समझ कर पढ़ना। समझ कर पढ़ने को तिलावत कहा जाता है। बेसोचे समझे पढ़ना तिलावत नहीं होता। वो पढ़ना होगा, वो तिलावत नहीं होगा, ठीक है? तो जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान दिल को थाम लेता है, कुरान दिल को तसल्ली और तशफी देता है, कुरान शिफा है, कुरान दिल के अमराज की शिफा है। और ये कुरान खुद बताता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो ये बात, समझ जाओ, अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देने वाली चीज है, और कुरान जिक्रुल्लाह की एक किस्म है। फिर जब कुरान आप खोलते हैं, अब आप उसको पढ़ने लगते हैं समझ के, ऐसे नहीं मैं कह रही कि भाई ऐसे ही, समझ के जब आप पढ़ने लगते हैं, यकीन करें खुद ब खुद आपके सामने ना मसलों के हल आने लगते हैं, आपको समझ आने लगती है। क्यों आप ये कहते हैं कि जब हम क्लास में आते हैं तो हमारा वही मसला होता है और वही बात आ जाती है? ये कुरान का मिरेकल है। मुझे तो नहीं आपके मसलों का पता कि क्या है, लेकिन कैसे वो चीज कुरान उसको एड्रेस करता है, कुरान में हल है, ठीक है? फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को देखें, कुरान पढ़ते थे तो रोते थे। क्यों? इसलिए कि इसका असर दिल के ऊपर होता है। ये दिल के ऊपर असर करती है चीज। हमने पढ़ा था ना, इन्नमल मोमिनून अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं, और उनकी खाले नरम पड़ जाती हैं। तो ये कुरान का असर है, ये मिरेकल किताब है। ये आगे हम पढ़ेंगे आज कुरान के ऊपर ही बात, कि किस तरह से ये मौजजा है, ये इंसानों को कैसे दिलों को थाम लेता है। तो जो मकड़ी के जाल से बच के अल्लाह का सहारा लेना चाहते हैं, तो अल्लाह की रस्सी को थामें, तिलावत कुरान करें, और कुरान जिंदगी से निकल जाए तो दिल में वो जो अल्लाह के साथ एक कनेक्शन होता है ना, वो टूट जाता है। आप खुद देखेंगे कि कुरान कुछ अरसे के लिए आपसे दूर हो तो दिल पे मकड़ी के जाले आने लगते हैं, खुद आपको पता चलने लगता है, खुद आपको समझ आने लगती है कि क्या हो रहा है, मैं दूर हो रही हूं। इसी तरह इस सूरत के शुरू में हमें बताया गया कि तुम आजमाए जरूर जाओगे, आजमाइश आएगी। तो अब इंसान सोचता है, डर जाता है, अल्लाह आजमाइश आए तो हम क्या करेंगे फिर, अब हम किसका सहारा लें आजमाइश में। तो ये हमें बताया गया कि अल्लाह का सहारा लो, और अल्लाह का सहारा कैसे होगा, फिजिकली तो हमें कुछ नहीं नजर आता, तो हम कैसे अल्लाह का सहारा लेंगे। कुरान को मजबूत पकड़ लेना, कुरान की तिलावत करना। तो इकरा नहीं कहा गया, तिलावत कहा गया है। और तिलावत में हमेशगी का माना भी है कि हमेशा करते रहो, यह नहीं है कि आज एक दिन किया तो कल छोड़ दिया, कल किया तो फिर परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बल्कि हमेशा इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखो। जितना इंसान का ताल्लुक इसके साथ मजबूत होगा, उतना ही वो आजमाइशों के अंदर साबित कदम रहेगा। यह कुरान वो किताब है जिसके अंदर शिफा भी है, आपकी जिस्मानी अमराज की भी शिफा है। आपको याद है हमने सूरह फातिहा के उस तफसीर में पढ़ा था कि साहबा एक जगह सफर कर रहे थे तो एक कबीले में पहुंचे, वहां आपका सरदार को सांप काट गया था, उन्होंने कहा भाई आप लोगों को कोई चीज आती है तो हमें बताएं ताकि ये इनको शिफा हो जाए। तो एक साहबी ने सूरह फातिहा पढ़ के उनके पर फूंकी थी तो शिफा हो गई, इसका वो जहर ने काम नहीं किया। फिर देखिए आप, ये कुरान ही है जिससे ये घरों के जो झगड़े हैं, घरों में बेसकूनियां बेचैनियां हैं, ये जो घरेलू झगड़े खास तौर पे की कौन कराता है, शैतान। तो शैतान घर से भाग जाता है जब आप कुरान पढ़ते हैं। हम ले दे के क्या करते हैं भाई, हमें अगर चाहिए होता ना कि अब हमारे घर के अंदर बड़े मसले हो रहे हैं, ऐसी चीजें होती, चलो जी एक दर्स करा लेते हैं, या चलो जी कुरान खुरानी करा लेते हैं, सबको बुलाओ कुरान पढ़ ले, ऐसे थोड़ी होता है। अब अपने घर को खुद, अपने दिलों को जिंदा करो और अपने घरों को जिंदा करो। कैसे, वहां पे कुरान पढ़ के रोजाना। वो लोग एक दिन आके पढ़ जाएंगे, कौन रोज आके आपके घर कौन पढ़ा करेगा। तो अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो शैतान घर में एंटर ही नहीं हो सकता। फिर प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करनी है तो क्या है, माल की भी हिफाजत करनी है तो क्या है। हमें पता चला कि बैतुल माल से जब शैतान चोरी करने लगा था तो उसने खुद बताया था आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, मैं नहीं आ सकता फिर। तो कुरान हमारे दिल को भी सुकून देता है, हमारे घरों की भी हिफाजत होती है, माल की भी हिफाजत होती है, हमें शिफा भी मिलती है, बैरूनी अमराज से भी मिलती है, अंदरूनी अमराज से भी मिलती है। जैसे कि इंसान के अंदर कोई निफाक है, इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो अंदर के कीना है, बुग्ज हैं, ये चीज़ें निकल जाती हैं दिल से, ये कुरान की बरकत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह वाले हैं और उसके चुने हुए बंदे अहलुल्लाह हैं। कितनी बड़ी सआदत है सिर्फ कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को मिली हुई है, किसी और के लिए ये सआदत, ये बात, ये एजाज किसी और को भी नहीं मिलता जो जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को मिलता है कि वो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं। कितनी प्यारी बात है कि आप अल्लाह के नाम के साथ पहचाने जाए और उसके चुने हुए हैं। और फिर कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए इब्ने माजा में है कि जमीन और आसमान की हर चीज, हत्ता के पानी के अंदर मछलियां भी दुआएं करती हैं। और क्या चाहिए हमें कि कोई और हमारे लिए दुआएं करने में अल्लाह ताला लगा दे, क्योंकि ये मेरे कलाम का इल्म ले रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में आइए कि काबिल रश्क लोग कौन है, बताएं आप मुझे कि कौन है जिसको ऊपर रश्क किया जा सकता है, जिसको इंसान देख के कहे कि जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो या बड़े बड़े घर हो या जिसका बिजनेस बहुत हो या जिसको कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, वो काबिल रश्क है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पाक की बकसरत तिलावत करने वाले लोग काबिल रश्क हैं। और वो ऐसे लोग जो बकसरत तिलावत करने वाले हैं ना, तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले नहीं, तिलावत करने वाले, क़यामत के दिन मुकर्रब फरिश्तों के साथ खड़े होंगे। मुकर्रब यानी अल्लाह के पास बड़े, अल्लाह ताला के पास जो फरिश्ते हैं ना उनके भी दर्जे हैं, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम का सबसे ऊपर दर्जा है, जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, कुछ इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, और इनके नाम भी हमें पता है ना, ये मुकर्रब फरिश्ते हैं, हामिलीन अर्श मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं ये उनके साथ होगा। और फिर देखें, अब ये मुस्लिम की हदीस है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों पर, जब भी ये पढ़ते पढ़ाते हैं कुरान मजीद, तो अल्लाह ताला सकीनत नाजिल फरमाता है। ये जो हम कहते हैं ना कि हमें दिल सुकून में नहीं है, क्या बात है, बेकली, बेचैनी, समझ नहीं आती, तो सकीनत अगर आप चाहते हैं ना कि सुकून आपके ऊपर नाजिल हो, कुरान करीम पढ़ना शुरू करो। फरिश्ते उनकी मजलिस के गिर्द एहतरामन खड़े रहते हैं, मिलके कुरान जो पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे हैं अल्लाह का कलाम, फिर अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फखर के तौर पे अपने हाँ फरिश्तों के सामने करता है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की हदीस है कि कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा ईमान वाले के हाथ में, बस जो इसको थामे रखेंगे गुमराह नहीं होंगे ना आखरत में हलाक होंगे। यानी आप सोच लें कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ गया, क्योंकि आपने रस्सी का एक सिरा पकड़ा हुआ है, एक अल्लाह के पास है। जहां डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाए, आपकी लाइन मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, बीच में किसी की भी नहीं जरूरत। तो ये कुरान करीम की बरकत है। हजरत इकरमा जो थे ईमान लाने के बाद दिन रात कुरान पाक की तिलावत करते थे, दिन रात, यानी कुरान के साथ उनको शगफ था। आज हम कुरान करीम ज्यादा से ज्यादा हमारा ये होता है जो मामूल बनता है वो रमजान का होता है, उसके अलावा मामूल के तौर पे नहीं पढ़ते। हाँ कभी कभी पढ़ लिया, लेकिन मामूल के तौर पे नहीं पढ़ते, इसको मामूल बनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद दूसरों को भी सुनाते थे और दूसरों से सुनना भी पसंद फरमाते थे। इसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है लोगों को। ये वो ये नहीं कि दर्स देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ही बस सुना देते थे। तो इसके लिए अगर हम ये चाहते हैं कि वाकई कुरान करीम से हम फायदा उठाएं, तो बगैर सोचे समझे नहीं पढ़ना, सोच समझ के पढ़ना। लेकिन ये भी ना कोई कहे कि बस सिर्फ तर्जुमे ही पढ़ लिया करें, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आती तो फायदा क्या पढ़ने का। नहीं, फायदा है, क्योंकि जो कुरान के अल्फाज हैं वो तर्जुमों के नहीं है। इसीलिए आपको कुरान करीम उसकी जुबान में सिखाया जाता है इस क्लास में, कि अब आपको तर्जुमा ना पढ़ने की जरूरत हो। तो अब हमने एक काम करना, होमवर्क कह ले या मेरे साथ प्रॉमिस कह ले, आप खुद अपने लिए बताएंगे कि आप कितना कुरान समझ कर एवरी डे पढ़ सकते हैं। मुझे ना कोई कहे कि मैं आधा पारा पढ़ सकती हूं, मैं पौना पारा, एक पारा पढ़ सकती हूँ, मैं 10 रुकू पढ़ूंगी, 5, ऐसे ना मुझे कहना। मुझे सिर्फ वो बात बताएं जो एवरी डे आप कर सकते हैं, हर रोज, जितना आसानी से आप हर रोज पढ़ सकते, चाहे वो 2 पेज है, चाहे वो 1 पेज है, चाहे वो हाफ पेज है। मुझे नहीं इसके, मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा ही पढ़ें, मगर जिसमें तसलसल हो और जो समझ के हो। आप अपनी जो तिलावत करते हैं करते रहें आप, जो जिस तरह, मगर जो समझ समझ के हो, आहिस्ता आहिस्ता हो। देखें जो समझ के पढ़ना है ना वो बेहतर है, बजाय इसके कि हम पारे पे पारा खत्म करते रहें। जब आप ये फैसला कर लें कि मैं इतना, आपको श्योर हो जाए कि इतना मैं आसानी से पढ़ सकती हूँ, देखें एक पेज पढ़ने में कितनी देर लग जाएगी बताएं। लेकिन मतलब सिर्फ कुरान ही पढ़ना है, तर्जुमा नहीं पढ़ना, और उसी से समझना है हमने। जो बात ना समझ आए तो अपने ये पारे कलमी आपके जो कुरान है ये अपने साथ उसी से पढ़ें आप। आपने अपने हाथों से लिखा भी होगा। सूरह फातिहा से हम इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट करें। एक टाइम मुकर्रर कर लें कि मसलन मैंने फजर के बाद पढ़ना है, और उसको फिर आप इंशाल्लाह एवरी डे फजर के बाद उतना आपने, जितना आप मेरे साथ कहेंगे कि मैं 1 पेज पढ़ सकती हूँ, बेहतर है कि आप 1 पेज ही रखें। आपने उससे ज़्यादा पढ़ना हुआ तो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन 1 पेज का तो ज़रूर हर एक टारगेट रखें। 1 पेज से मतलब ये है कि कलमी जूस के अंदर तो 1 पेज बहुत ही छोटा है, आप उसमें 1 रकू कर लें। बाकी लोग जो दूसरे उस्मानी मुसहफ़ से पढ़ते हैं तो 1 पेज कर लें, तो वो लेकिन समझ के पढ़ना है। जो चीज़ नहीं समझ आई फौरन नीचे से तर्जुमा देख लेना, इस तरह से तर्जुमे की दोहराई भी हो जाएगी, कुरान मजीद की तिलावत भी हम कर सकेंगे। देखें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं इस बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये करना है, जो किताब आपको मिली है इसको दूसरों तक पहुँचाएं, इसको पढ़ के सुनाएं, ये नहीं कि सिर्फ खुद ही पढ़ते रहना, पढ़ के सुनाओ, दूसरों तक भी पहुंचाओ, दावत का भी काम करो। मगर पहले हम खुद पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो तब भी हम आगे जाके पहुंचा सकेंगे ना। तो इसलिए ये काम हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला, और इसको जिंदगी की रूटीन बनाना है। कभी दूसरों से भी सुन लिया करें, कभी खुद की दूसरों को सुना दें, और इसमें शाये ना हो बिल्कुल। देखिए कुरान करीम के साथ हमारा उस तरह से ताल्लुक नहीं है जैसे बाज दूसरी चीजों के साथ ताल्लुक है। मुझे बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है, मैं कहना तो नहीं चाहती मगर हकीकत यही है, तो अब क्या करें कि अगर हमारा कुरान के साथ ताल्लुक सिर्फ उतना सा हो जाए जितना कि हमारा हमारे सेलफोन के साथ है, तो फिर मेरा ख्याल कुछ कहने की और ज़रूरत ही ना पड़े। ये हाफ पेज या एक पेज की कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हालांकि कहाँ ये सेलफोन है और कहाँ कुरान है, लेकिन चूंकि हमारी हालत ऐसी है तो इसलिए ये कहना पड़ रहा है, वरना कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो जिंदगी बदलने का नुस्खा है, जो जिंदगी बदलने वाली किताब है, इसको हमने तिलावत करना है। तला यतलू तिलवन, किसी चीज के पीछे पीछे जाना और बार बार जाते रहना। तो पीछे पीछे भी जाना यानी फॉलो करना है मीनिंग को, और ये भी करना है कि यानी रोजाना हमने पढ़ना है। वाकिम सोला, और कायम करें नमाज। कायम करें नमाज का माना क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ने को कायम करना नहीं कहते, नमाज को उसकी तमाम शरायत के साथ, उसके तमाम आदाब के साथ, उसको समझ के दिल की अटेंडेंस अटेंटिव होने के साथ हम पढ़ें, वो है अकीमिस सलाह। दूसरा करने का काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया गया। देखिए यहाँ पे तीन बातें आएंगी जिनका हुक्म दिया गया। नंबर वन बात, कुरान करीम की तिलावत, उसके लिए वक्त निकालना। नंबर टू, नमाज को पढ़ते तो हम सब ही हैं, लेकिन हमने अब नमाज को कायम करना है। कायम करने में वुजू से लेकर एंड तक, यानी उसको बिल्कुल जो उसकी सारी शरायत है उसके साथ, ये अल्लाह के साथ एक ताल्लुक है। सौद लाम या से है ना सलात, तो असला सली का मतलब होता है आग पे तपाना। तो नमाज इंसान को खालिस करती है। क्या नमाज का जिक्र तो कुरान करीम में तकरीबन 700 टाइम्स आया है, और इसका सबसे ही पहला सवाल होना है क़यामत के दिन। अब आप सोचें, अगर ये सही निकल आए तो फिर आगे हज है, ज़कात है, रोजे वगैरह, ये उनका बाद में फिर सवाल होगा। अगर यही ना सही निकली तो फिर क्या हवाल होगा? सोचें फिर, तो यहीं पे पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया तो आगे क्या फिर होगा? तो इसलिए नमाज को इस तरह से अदा करें कि वाकई नमाज नमाज हो, ऐसा ना हो कि सलाम फेरते ही हमारे मुंह पे दे मारी जाए। अल्लाह ताला माफ करे। नमाज के बारे में फरमाया है अल्लाह ताला ने कि इसको मेरे जिक्र के लिए कायम करो। नमाज को किस लिए कायम करो? मेरे जिक्र के लिए। और अगर नमाज में अल्लाह का जिक्र ही ना हो, अल्लाह की याद ही ना हो, तो फिर वो कौन सी नमाज है बताएं? वो तो नमाज ही ना हुई जिसमें अल्लाह की याद ही नहीं है। और कितनी हमारी नमाजें होती हैं उनमें सब कुछ याद होता है सिवाय अल्लाह की याद के। अकीमिस सलात लिज़िक्री, सूरह ताहा में। ये तो वो काम है कि जो अल्लाह की याद दिलाता है। इसी वजह से फरमाया इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई के कामों से रोकती है और बुराई से रोकती है। फिर हमारी नमाजें क्यों नहीं रोकती? देखिए हम सोचते हैं कि क्या फिर ये बात गलत है? नहीं, बात तो गलत नहीं है। क्या कसूर नमाज का है या कसूर हमारा है? जाहिर है नमाज का तो कसूर नहीं है। जब अल्लाह ताला ने बात बता दी कि ये रोकती है तो जरूर रोकती है। हाँ, इसका मतलब है कि हम ही कुछ ऐसी कमी कर रहे हैं कि नमाज नमाज ही नहीं है। क्योंकि ना हमें नमाज का तर्जुमा आता है बाज दफा, ना तहारत का सही एहतमाम होता है, ना वुजू सही से किया होता है, और दिल को मुतवज्जे रखना तो बहुत ही मुश्किल होता है। दिल की तवज्जो हो, दिल अक्सर अक्सर जहन जो है भटकता रहता है। अब देखेंगे, नमाज तो हुक्म देती है, मगर हुक्म को भी हर कोई थोड़ी मानता है। अब अल्लाह ताला हुक्म देता है कि गुनाहों से बचो, जाहिर और बातिन हर तरह के छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों से बचो। अब देखें, अल्लाह का तो हुक्म आ गया मगर नहीं मानते लोग। तो नमाज तो हुक्म दे रही है ना, ये मसला नहीं कि वो फिर रुकते क्यों नहीं है। वो रुकते इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना खुद ही फैसला किया हुआ कि हमने नहीं रुकना, अदरवाइज नमाज तो उनको रोक ही रही है। अब वो रुकना ही ना चाहे तो फिर क्या। तो देखिए ना, अब ये डेड नमाजें हैं जो हम पढ़ते हैं, डेड, इनमें रूह ही नहीं है, तो फिर वो फायदा कैसे देंगी, वो रोकेंगी कैसे। दूसरी ये भी बात है। तो इस चीज का, इस सवाल का जवाब, क्योंकि बाज लोग फिर कहते हैं फिर अच्छा कुरान तो कहता है नमाज रोकती है, तो फिर इतने लोग ऐसे कर रहे हैं, वो फलाना ऐसे करता है, वो नमाज पढ़ के ये करता है, तो वो क्यों फिर ऐसे कर रहे हैं। इसलिए कि वो नमाज को सही तरह उसकी रूह के साथ अदा नहीं करते। जो नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती, वो नमाज है जो खुशू खुजू के साथ पढ़ी जाए, ऐसे पढ़ी जाए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अब इंसान अगर ये ख्याल करे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है हर रोज दिन में 5 दफा, तो फिर वो उसके बाद नमाज के बाद वो कोई बुराइयां तो नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल ही किसी गंदगी में चला जाए। लेकिन हाँ, अगर नमाज इस तरह से पढ़ी हुई है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं ऐसी, और नमाज का टाइम हो गया, अच्छा उठ के और जल्दी से बंद करो, मैं 1 मिनट में पढ़ के आती हूँ नमाज, उधर बंद की और उधर ठूंगे मारे और फिर भागे भागे, और नमाज के अंदर भी फिल्म की स्टोरी जहन में चल रही कि इसके बाद क्या होना, और फिर जल्दी से आके आप फिर लगाओ, तो फिर वो तो नमाज ना हुई। तो नमाज वही वाली रोकती है जो कि इंसान फिर उसमें आजी भी हो, उसमें खुदू भी हो, तब नमाज जबाने हाल से इंसान से कहती है कि अल्लाह ताला की तू इतनी ताजीम कर रहा है, इतना अदब कर रहा है, उसकी बारगाह में खड़ा हुआ है सारे काम छोड़ के, तो फिर उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता, तो बुराई के काम नहीं कर सकता। नमाज सिर्फ थोड़ी देर का ताल्लुक नहीं कि वो चंद मिनट जो इंसान खड़ा हुआ है बस वो ये नमाज हो गई, नहीं, नमाज तो अल्लाह की जात का एहसास देती है हमें कि अल्लाह इज वॉचिंग मी। ये जब भी तो देखें ना, हमने वजू किया या नहीं, या मेरा वजू कायम है या नहीं, कोई और भी नहीं जानता, अल्लाह को पता है उसकी। मैं ये जानती हूं कि अल्लाह को तो पता है ना, तो मैं जो दोबारा वजू करने जाती हूं। तो जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो ये एक एहसास दोबारा रिफ्रेश होता है कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना, उसको तो पता है ना। अब इसको रिवाइज करने के बाद फिर वो कैसे दोबारा जाके बुराइयों के अंदर फिर फंस सकता है, कैसे वो बेहयाई के काम फिर से कर सकता है। तो ये दोबारा कनेक्शन जोड़ना है। इंसान किसी भी बुराई के अंदर था, नमाज में फिर कनेक्शन जुड़ गया, क्योंकि दिल भी जिस्म भी जेहन सब कुछ मिल गए, फोकस हो गए सिर्फ अल्लाह की तरफ। जिस्म से आप एक्शन कर रहे हैं, जेहन आपका अल्लाह की तरफ लगा हुआ है, दिमाग के ख्यालात कुछ और नहीं है, मगर जो आप बोल रहे हैं सिर्फ उसकी तरफ आपके ख्यालात हैं, तो फिर तो जाहिर ही बात है कनेक्शन जुड़ेगा, फिर कैरेक्टर में चेंज आएगी, जरूर आएगी चेंज। क्योंकि एक आदमी आया था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज किया कि एक आदमी सारी ही रात कुरान पढ़ता है और सुबह उठ के चोरी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब इसकी किरात इसको चोरी से रोक देगी। इसी तरह एक और जगह आता है कि एक आदमी चोरी करता है और वो नमाज भी पढ़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब उसकी नमाज उसको इस चोरी से बाज कर देगी। क्या, तो ये बाज करती है, मगर अगर कोई इंसान बाज नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे ऐसी भी स्टोरी सुनी है कि रिश्वत मांग रहे थे और जब मतलब है कि कोई काम कराने के लिए, किसी ने वाक्य सुनाया, ये कुछ लोगों से ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा भाई वो रिश्वत उन्होंने मांगी, और फिर जब काम करने का टाइम आया उन्होंने कहा जी अजान हो गई है, अब हम नमाज पढ़ के आते हैं फिर आके आपका काम करते हैं। वो कोई उनकी फाइल वगैरह थी, तो यानी हैरत होती है कि वो उठ के गए, नमाज पढ़ी और फिर वापस आए, तो ये क्या बात है। फिर देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस नमाजी की नमाज ने उसको गुनाहों से और सियाकारियों से बाज नहीं रखा ना, वो अल्लाह से बहुत दूर हो जाता है। یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے بھی تمہیں اللہ کا احساس نہیں آیا تو تم پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہو, دور چلا جائے گا. فرمایا جس کی نماز کو بے جا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر, ایسی نماز نہیں قبول ہے. استغفر اللہ. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جو نمازی بھلے کاموں میں مشغول اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو, سمجھ لو کہ اس کی نماز اسے اللہ سے اور دور کرتی جا رہی ہے. یعنی اب جب اس نے نماز پڑھی اور اس نماز نے ہی اس کو برائی سے نہیں روکا تو اللہ سے دور ہو گیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی بات نہ مانے اس کی نماز ہی نہیں. اور نماز کیا کہہ رہی ہے اس کو؟ کہ برائیوں سے بچو, بے حیائیوں سے بچو. اچھا پھر اگر انسان سے برائی ہو بھی جاتی ہے, انسان ہے نا, کوئی برائی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں اس کو ریمائنڈر مل جاتا ہے یہ میں کیا کر رہا تھا. نماز اس کو احساس دلا دیتی, پھر وہ اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے. تو اس لیے نماز ایک ریمائنڈر ہے, نماز سے انسان پھر واپس آ جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ اکبر. اس سے انسان کا ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ سے پھر جڑ جاتا ہے. اگر وہ بھول گیا تھا تو یہ یاد کرا دیتی ہے. تو یہ ایک نسخہ ہے کس سے بچنے کا, فحشا سے بھی اور منکر سے بھی. تو اس لیے ہم نے اب سے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا سٹارٹ ہے نا نماز کا, یعنی جس وقت کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اس کی شروعات وضو سے ہوتی ہے. وضو ایک پریپریشن ہے نماز کی. اب اس کو اگر ہم شعور کے ساتھ کریں گے, یعنی کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ اب مجھے دیکھنے والا ہے اور اللہ کے آگے حاضری میری ہونے والی ہے, اس شعور کے ساتھ وضو کریں تو پھر اس وقت سے ہی آپ ایک مینٹل پریپریشن شروع کر دیتے ہیں. مینٹلی بھی تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا. ایک دم جانباز پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر ایسے شروع کر دیتے ہیں جب ہم, تو وہ ہمارا مائنڈ پریپیئرڈ نہیں ہوتا, وہ انہی باتوں میں ہوتا ہے ابھی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. تب پھر وہی باتیں ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں. تو جب آپ وضو کرنے کے لیے بسم اللہ کہیں تو بس وہیں سے سوچنا شروع کر دیں. جب آپ کی سوچ اس بات کے اوپر آ جائے گی نا تو پھر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کا مائنڈ ایک اس موڈ میں آ جائے گا. پھر نماز شروع کریں تو سوچیں کہ قیامت کے دن بھی میں اسی طرح اللہ کے آگے کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا ہوگا. یہ میری اللہ کے ہاں کی حاضری کی ایک پریکٹس ہے, ایک ریہرسل ہے جو میں یہاں پہ کر رہی ہوں, ایسے ہی میں نے وہاں کھڑے ہونا. تو یہ بھی پھر انسان کے لیے فائدہ مند نماز ہوتی ہے. پھر جتنی نماز میں ہم دیکھیں بولتے ہیں اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں, ہم رکوع میں جاتے ہیں, دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں, اللہ اکبر ہے, اللہ بڑا ہے, میری باتیں بڑی ہیں, اللہ کا حکم بڑا ہے. یہ چیزیں انسان کو جب سوچ کے وہ پڑھ رہا ہے نا تو یہ چیزیں انسان کا پھر ایک ذہن ہی بدل دیتی ہیں اس وقت. یہ پھر انسان درست طریقے سے اگر نماز پڑھے تو واقعی نماز ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ پڑھے تو واقعی یہ انسان کو روکتی ہے برائیوں سے. اور پھر اگر انسان یہ سوچ لے کہ اگر پتہ نہیں مجھے اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے کہ نہیں ملے, جب بھی میں کسی کی ڈیتھ کی خبر سنتی ہوں اچانک ڈیتھ کی, تو ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی ہے, فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں ختم ہو گیا, سوچتی ہوں پتہ نہیں اس سے پہلی نماز اس نے کیسے پڑھی ہوگی, اچھی طرح پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی صحیح سے. تو یہ چیز چونکہ اس کا سوال سب سے پہلا ہونا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے, اتنے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ. سرگوشی تو جس کے قریب ہوتے ہیں آپ اسی سے کرتے ہیں نا. آپ اتنی دور بیٹھے ہو تو یہ تھوڑی کہوں گی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ سرگوشی ہو رہی ہے. سرگوشی جس کے قریب ہوا جاتا ہے, انسان نماز میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جتنا آپ کو یاد ہوتا ہے, تو اس سے بھی دیکھیں फिर आपकी कंसंट्रेशन, उसका ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका कंसंट्रेट करने का कि आप नया नया कुरान मतलब और ज्यादा ज्यादा याद करें, जब उसको रिवाइज करते हैं तो इंसान का फोकस रहता है फिर। नहीं, कम से कम मुझे बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। अगर सिर्फ वो ही पढ़ते जाएं जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं तो वो तो हमें इतना रट गया हुआ है, इतना रट गया हुआ है कि अब फोकस किए बगैर भी हम उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आपने नया कोई हिस्सा कुरान करीम का याद किया होता है तो फोकस करना पड़ता है, चाहे थोड़ा सा ही पढ़े, ये नहीं कि कोई आपने पूरा पूरा पारा पढ़ना है, दो चार ही आयते पढ़े, मगर वो जो नई वाली आपने हिफ्स की है वो वाली पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला आपका फोकस रहेगा। तो और इसमें अल्लाह को याद करना है कि अगर हम अपनी नींद तोड़ के नमाज में खड़े होते हैं, अपने और काम छोड़ के नमाज में खड़े होते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारी नमाज सही नमाज नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी नमाज का। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज है। क्या मतलब है यहाँ पे? एक मतलब तो इस चीज का ये है कि जब तुम अल्लाह को याद करते हो नमाज में, तो वो जो तुम्हारा याद करना है वो अल्लाह के याद करने से बहुत बड़ी चीज है। यानी फज़कुरूनी अज़कुरकुम है ना, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। जब आप नमाज में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको याद करता है, और अल्लाह का याद करना, वला ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का याद करना अकबर है, ज्यादा बड़ा है जो अल्लाह तुम्हें याद करता है। तो अल्लाह ताला अपने, हाँ अपने मुकर्रब फरिश्तों में इंसान को याद करता है, अल्लाह ताला अपनी वहां की जो आसमानों में मजलिसें हैं वहां पे उसको याद करता है। मैंने जैसे आपको अभी हदीस बताई है कि सकीनत भी नाजिल होती है और अल्लाह ताला जिक्र करता है उस बंदे का। सोचें आप कि हमारा जिक्र अल्लाह के हाँ हो रहा हो, एक इंसान सोचता है कोई आपके जहन में कोई बहुत जिसको आप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते हो, बहुत बड़ी चीज समझते हो, बड़ा उसकी इज्जत करते हैं, आपको उससे बहुत मोहब्बत हो, सोचें कि वो आपका जिक्र करे, सोचें वो आपका नाम ले कहीं अब किसी मजलिस में आपका नाम लेके आपका जिक्र करे, तो आपका क्या हाल होगा। आप कहते हैं मैं तो उसका जिक्र करती रहती हूँ, बड़ी बात तो ये कि उसने मुझे मेरा जिक्र किया, पता है उसने वहां भी लोग भी आके बताते हैं तुम्हें, पता है वो फलान जगह पे ना उसने तुम्हारा जिक्र किया था, तुम्हारा नाम ले रही थी, तो इंसान को कितनी खुशी होती है। अब अल्लाह ताला तो लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला की तो वैसे वैसी तो मिसाल किसी और की है नहीं, उसकी तो मिसाल सबसे बुलंद है, तो किसी सेलिब्रिटी से तो नहीं हम मुकाबला कर सकते। लेकिन ये सोचें कि ये तो छोटे छोटे इंसान है, जब अल्लाह ताला हमारा जिक्र करे, हम मसलन अच्छी तरह नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को अच्छी तरह याद करते हैं, वो हमें याद करता है वहां पे, ये सोच लिया करें कि मुझे अब इस वक्त याद किया गया है, कितना अच्छा लगे। फिर ये जो जिक्र है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहां से मैं बोल रही हूं और ये मेरा जिक्र यहीं पे, बल्कि हमें हदीस से पता चलता है कि इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है तो वो जिक्र ऊपर जाता है, वो तस्बीह उसकी ऊपर जाती है, अर्श के गिर्द घूमती है, और उसकी एक भिनभिनाहट होती है, जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट होती है ना, उस तरह उसकी भिनभिनाहट होती है। और वहां पे देखें, एक उसका जिक्र हो रहा है, एक उसकी तस्बीह उस जगह पहुंच गई जिस जगह इंसान खुद नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला कितनी कदरदानी करता है इंसान के जिक्र करने की, और कितनी बड़ी बात है अल्लाह अकबर के जिसकी तस्बीह सारी कायनात करती है, सारी कायनात, चाहे वो जानदार है या बेजान है, हर पत्थर शजर अशर हर एक चीज सूरज चांद सितारे सब उसकी तस्बीह करते हैं, सब उसका जिक्र करते हैं, सब उसको याद करते हैं। सोचें वो हस्ती मेरा जिक्र करे, सुभान अल्लाह, वो हस्ती मेरा जिक्र करे एक हकीर से जर्रे का, तो ये कब होगा? लेकिन जब मैं उसको याद करूंगी, वो तो सारी कायनात ही उसको याद कर रही है, लेकिन मेरे जिक्र करने को उसने देखो कितनी बड़ी अहमियत दी, कितना बड़ा एजाज दिया कि उसने फरमा दिया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये गारंटीड बात है कि मैं याद करूंगी, वो मुझे याद करेगा। तो आप अगर चाहते हैं ना अल्लाह आपको याद करे, अल्लाह ताला आपका जिक्र करे, तो आप उसको याद करना शुरू कर दें। दुनिया में तो कोई हमें याद करे तो वो फिर आके बताता है जी मैं आपको याद कर रही थी, मैंने आपको बड़ा याद किया, और वो उसको से आपको मिलेगा भी क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह को याद करते हैं तो वो हमारा हमें याद करता है इससे बढ़ के मजलिस में, और इसका वादा उसने कुरान में फरमा दी, इससे क्या बड़ी और बात हो सकती है। और फिर सूरह अनफाल में आता है वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह को याद करो बहुत ज्यादा ताकि तुम फलाह पा जाओ। इसका मतलब कामयाबी कैसे मिलती है, कामयाबी का नुस्खा क्या, अल्लाह की याद। नमाज में भी अल्लाह की याद है, कुरान पढ़ने में भी अल्लाह की याद है, तस्बीहात करने में भी अल्लाह की याद है। और अब तो वो दिन आ रहे हैं जिनमें अल्लाह की याद हमने खूब खूब करनी है, अल्लाह का जिक्र खूब खूब बुलंद करना है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक इस आयत की तफसीर क्या है कि अल्लाह जो तुम्हारा जिक्र करता है ना वो उससे बड़ा है जो तुम उसका जिक्र करते हो, ठीक है, ये एक समझ आ गई। दूसरा इसका माना है कि इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है वो तमाम नेक अमाल से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। अच्छा, इसके बारे में एक हदीस आती है, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको ये खबर ना दूं कि तुम्हारे रब के नजदीक तुम्हारा कौन सा अमल सबसे अच्छा है, सबसे पाकीज़ा है और सबसे बुलंद दर्जे वाला है, और जो तुम्हारे सोने और चांदी के सदका करने से भी ज्यादा अच्छा है, और इससे भी ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारा तुम्हारे दुश्मनों से मुकाबला हो, तुम उनकी गर्दने मारो और वो तुम्हारी गर्दने मारे, यानी अल्लाह के रास्ते में लड़ने से, सदका करने से, और ये सारे नेक अमाल से ज्यादा बुलंद है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सा अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करना, इतना बड़ा अमल है ये, सारे तुम्हारे नेक अमाल से ज्यादा बड़ा अमल है। फरमाया वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और फिर एक और हदीस आती है, किसी ने पूछा सबसे अच्छा हज कौन सा है, जो हज पे जा रहे हैं वो सुन ले। फरमाया जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र होता है। पूछा गया सबसे अच्छी नमाज कौन सी है, फरमाया जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो, यानी ख्याल आप छोड़ के अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की याद हो। पूछा गया कि जिहाद कौन सा सबसे अच्छा है, फरमाया जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो, यानी दुनिया का कोई काम भी हो, चाहे नेकी का ही आप काम कर रहे हैं, उसका भी यानी क्वालिटी या स्टैंडर्ड ये बहुत बढ़ जाता है जिस वक्त आप उसके अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं। मसलन रोजा है, अब रोजा इटसेल्फ एक इबादत है, लेकिन रोजे का रिवॉर्ड बढ़ जाता है, आपका रोजा बेस्ट हो जाता है अगर आप रोजे में अल्लाह का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं। और ये रूह की ग़िज़ा भी है अल्लाह का जिक्र। और देखें इसी तरह दिल का सुकून भी अल्लाह का जिक्र, मैंने जैसे आपको बताया दिलों के सुकून के लिए अल्लाह ताला ने खुद नुस्खा फरमा दिया अल्लाह भी जिक्र लाए तत्मैन को। और फिर इसी तरह जब इंसान अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है तो सूरह अज़ाब आयत नंबर 35 में है कि अल्लाह का जिक्र जो कसरत से करते हैं उनके लिए मगफिरत भी है और अजर अजीम भी, आपकी मगफिरत होती जा रही है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए थे तो क्या उन्होंने किया था, जिक्र ही तो किया था क्या। तो ये अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान पाक में फरमाया ये लदीना आमनु कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों अल्लाह को बहुत कसरत से याद किया करो, बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। तो अगर आप चाहते हैं सकीनत तारी हो, रहमत हो आपके घर में, तो मिलके भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। आप जैसे हम अभी बैठे हुए तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, एक मजलिस में भी कर लेते हैं, अकेले भी करें अल्लाह को याद, तो जिक्र करने से इंसान हिजबुल्लाह में शामिल हो जाता है, अल्लाह की पार्टी बन जाता है, वरना वो हिजबु शैतान बन जाता है, शैतान की पार्टी बन जाता है। सूरह मुजादला में ये है कि शैतान फिर उनको अल्लाह की याद भुला देता है, फिर वो हिजबु शैतान बन जाते हैं। और फिर आपको थकावट होती है, अगर बहुत ज्यादा थक जाती हैं, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, मुझे कोई खादिम दे दें, घर के काम काज से मैं थक जाती हूँ। फरमाया इससे बेहतर ना मैं तुम्हें चीज़ दे दूँ, सुबहान अल्लाह 33 times, अल्हम्दुलिल्लाह 33 times, अल्लाहु अकबर 34 times, ये तस्बीह ये फातिमा है ना ये पढ़ लिया करो, देखें कितनी अच्छी बात है। फिर देखें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सारी मलून है, यानी लानत ज़दा है, सिवाय जिक्रुल्लाह के और عالم دین کے اور متعلم کے, یعنی جو دین کا علم سکھانے والا اور دین کا علم سیکھنے والے, ان کے علاوہ ساری لعنت زدہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سا وہ بندہ ہوگا جس کا درجہ بہت بلند ہو؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو, بہت زیادہ یاد کرتا ہو اللہ کو. دیکھیں نا, اب جو اللہ کو یاد کرے گا بہت زیادہ, ہمیں ہی پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کو بہت یاد کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کرنے والے کا مقام یہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے, تو آپ کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کو جمدان کہتے تھے, تو آپ نے فرمایا چلتے رہو, یہ جمدان ہے. مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنے والے مرد ہیں اور بہت کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں. وہ سبقت لے گئے, یعنی سب سے آگے نکل گئے, ریس میں جیت گئے وہ. سبحان اللہ. تو کیا ہمارا جاتا ہے, کیا ہمارا لگتا ہے, کتنا لگتا ہے ہمارا کہ ہم سبحان اللہ بول دیں, الحمدللہ بول دیں, اللہ اکبر کریں, اللہ کی بڑائیاں بیان کریں, اور ہماری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے. بیکار باتوں سے تو تر رہتی ہی ہے, اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت. اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. اور کسی کو بھی یاد کرنا اس سے محبت کی علامت ہے. اب ہمیں کسی کو اس سے محبت ہوتی تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں, ایسے تو نہیں کسی کو یاد کرتے. تو جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے گا, اور یاد اصل میں دل سے ہوتی ہے, پھر ہی زبان پہ آتی ہے. دل یاد کرتا ہے کسی کو, دل کسی کی یاد میں تڑپتا ہے, زبان تو نہیں تڑپتی ہے کسی کی یاد. زبان پہ تو پھر لا محالہ, پھر انسان مطلب ایفرٹ نہ بھی کرے, جو وہ دل کے اندر جب یاد ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہی آتی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. سبحان اللہ, جو تم کاریگریاں کر رہے ہو نا, اللہ جانتا ہے. اب اس میں تصنعون کی بات آئی, ہمیں یہ بتا دیا گیا جو بھی سکلڈ ورک تم کرتے ہو, کوئی بھی آپ ایسا کام کر رہے ہیں, کوئی ذہنی کام ہے, کوئی جسمانی کام ہے, اللہ کو تو پتا ہے, وہ تو جانتا ہے. آپ خود سوچیں, ہمیں کوئی کہہ دے کہ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں نا وہ فلاں کو پتا چل گیا, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک دم احساس ہوتا ہے نا, اچھا اس کو پتا چل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی تمہاری مشغولیت ہے, تمہاری جو بھی بیزی, جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑی بیزی رہی, میرا سارا دن میرا ان کاموں میں گزر جاتا ہے, اس میں یہ جو ساری تمہاری مشغولیت ہے, تمہارا جو بھی پیشہ ہے یا ہنر ہے تمہارے پاس, سکلڈ ورک کو کہتے ہیں نا صنعت, اللہ سارا جانتا ہے. اگر ہم یہ کہیں جی مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا, ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن کا, ٹائم ہی نہیں ملتا ذکر کا, تو یہ جو تم جن چیزوں میں مشغول ہو, اللہ تمہاری ساری مصروفیات کو جانتا ہے. لوگوں کو ہم کہہ کے تو بہلا سکتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ملتا کیا کریں, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو جانتا ہے کس کی مشغولیت کتنی ہے, کتنی مصروفیت ہے کس کی, کہ جس کے اندر سے وقت نہیں نکل رہا قرآن کے لیے, نماز کے لیے اور ذکر کے لیے, یہ تین چیزوں کے لیے. اللہ اکبر. اب دیکھیں دوسرے تو مان ہی جائیں گے ہماری بات, نہیں جی اس کے بچے چھوٹے ہیں, اس کے ایسے ہے, اس کا یہ مسئلہ. کس نے شیئر کیا کہ جی میں بہت مصروف تھی, یہ میری مصروفیت تھی, ظاہر ہے بچے بھی چھوٹے تھے تو میں تو کلاس نہیں لے سکی, دو تین دفعہ سے نہیں کلاس لے سکی میں کیونکہ بہت مصروفیت تھی. لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے جب یہ بتایا کہ فیس بک پہ یہ تھا, فیس بک پہ وہ تھا, فیس بک پہ یہ کوئی گروپ ہے اس کے اندر ایسے ڈالتے ہیں, اس کے سب باتیں جو اس وقت کی کرنٹ چل رہی تھی وہ سب ان کو معلوم تھی. فیس بک پہ بیٹھنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا, کلاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے لیے ٹائم تھا. اب دوسرا بندہ جو سنتا ہے وہ تو مان لیتا ہے ہاں بیچاری کے پاس نہیں ہوگا, ظاہری بات ہے واقعی کوئی ان چیزوں کے ساتھ جو بھی ان کے گھر میں مسئلہ تھا اس کے ساتھ وقت نہیں ملا ہوگا ان کو. لیکن ہم یہ چیزیں دیکھیں لوگوں کو سنا کے تو بہلا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے, ہر چیز کو وہ خود وٹنس ہے, خود دیکھ رہا ہے, اس کو کیسے بہانے لگائیں گے. اللہ اکبر. تو इस हमने आयत से बहुत कुछ सीखा है और इसको लेकर चलना है हमने। या आज से ही हमने इंशाल्लाह अपनी नमाज को फिक्स करना है और कुरान करीम का ये एक पेज का आपने वादा करना है, ठीक है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।